ओम शांति। यज्ञ के बिगनिंग का इतिहास देखें, हिस्ट्री देखें। जैसे ही ब्रह्मा बाप को साक्षात्कार हुए, विजन हुआ, निश्चय हुआ, उन्होंने पूरा अपना जो भी बिजनेस था उसको समेट कर ट्रस्ट बनाया और ट्रस्ट बनाकर यज्ञ का कंस्ट्रक्शन हुआ। और आगे भी देखा, दादियों ने भी उसको आगे किया। उन्होंने ये चिंता नहीं की कि क्या होगा, उनका लक्ष्य था कि कैसे इस कलयुग को सत्युग बनाए, स्वर्ग बनाए, उसमें अपना मैपन भी स्वा करके बच्चों को आगे किया। खुद को हमेशा कहा मैं सेवाधारी हूं और सबको आगे किया। उपकार का अर्थ ही होता है चैरिटी। चैरिटी पहले हमें खुद की करनी है। खुद की करनी है इसका अर्थ है कि हम अपने नेगेटिव संस्कारों को उसके ऊपर विजय प्राप्त करना है। स्वराज्य अधिकारी विश्व अधिकारी बनता है। तो पहला मैं अपने से शुरू करता हूं, मैं अपनी चेकिंग करता हूं और अपनी चेंज लाता हूं। अगर मेरा खुद का ठीक है तो मैं दूसरों को भी परिवर्तन के निमित्त मदद करूंगा। जो दो दिन के पहले की मुरली थी, सौभाग्यशाली वो है जो ज्ञान को धारण करता है और दूसरों को भी धारण करने में मदद करता है, देता है। आज का भी वरदान था कि बाप के संस्कारों को हम प्रैक्टिकल में लाकर अपने जीवन को अपलिफ्ट करते हैं। उपकार का अर्थ केवल ग्रॉस नहीं है, फिजिकल नहीं है, वो तो एक है पार्ट, एक फिजिकल पार्ट है, एक इमोशनल पार्ट है और एक स्पिरिचुअल पार्ट है। फिजिकल पार्ट ये है कि जब कभी भी किसी को कोई मदद चाहिए तो हर आत्मा को लगता है कि मैं करूं, अगर वो कर सकता है, तन मन धन से कर सकता है, वो हमारा एक फाउंडेशन है। और वो भी यज्ञ का एक फाउंडेशन था, इसीलिए यज्ञ में भंडारी सिस्टम शुरू हुआ कि हर कोई उसमें कंट्रीब्यूट करे। बड़ी दादी का याद आता है कि उन्होंने एक प्रोजेक्ट लाया था कि हर कोई हर दिन एक रुपया उसमें डाले, और मैंने देखा वो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा पावरफुल चला और देखता था कि हर कोई उसमें अपने कैपेसिटी के अनुसार एक रुपया, एक हजार रुपया कंट्रीब्यूट करता था। उसका मीनिंग क्या था? बाबा ने कभी नहीं कहा कि हाथ में दो, बाबा ने कहा उसमें डालो। हर कोई डाल रहा है, हाथ जा रहा है। इसीलिए कहा जाता है जब दान करो तो लेफ्ट वाले को भी पता ना लगे। कबीरा जब लोगों को देता था उनका सिर नीचे रहता था और लोगों को देते थे। तुलसीदास ने पूछा, आप दे रहे हो, इतने महान हो, फिर आप सिर क्यों नीचे करते हो? कबीरा ने कहा, जो मैं दे रहा हूं वो मेरा नहीं है, और कोई दे रहा है मैं केवल उसको आगे बढ़ा रहा हूं। तो उसमें मैंपन का भी अनुभव न हो। अगर लगता है कि मैंने दिया तो माइनस शुरू होता है। इसीलिए जब हम दें कोई भी चीज, चाहे घर से दे रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, वो निस्वार्थ होकर दें। वो चीज मेरी नहीं है, मैं उसको आगे बढ़ा रहा हूं। ये स्पिरिचुअलिटी का प्रिंसिपल है और बहुत गहरा प्रिंसिपल है। इसको ही कहा जाता है फ्लो। जो चीज फ्लो करती है वो आगे बढ़ती है, उसको धक्का नहीं मारना पड़ता। इसीलिए लक्ष्मी को भी दिखाया है ऐसा। लक्ष्मी खड़ी है, पैसा आ रहा है जा रहा है, खड़ी है, आ रहा है जा रहा है, फ्लो कर रहा है। जो चीज जितनी फ्लो करती है, फ्लेक्सिबल होती है, उतना ग्रोथ होता है। जो चीज रिजिड होती है, ब्लॉक होती है, वो खत्म हो जाती है। इसीलिए बाबा ने पहला चीज खत्म किया, मैंपन। मैंपन खत्म हुआ तो हम उपकार अपने ऊपर भी करते हैं, दूसरों के ऊपर भी करते हैं। पहला उपकार हमारा यही है कि मैं एक चैतन्य शक्ति हूं, ये शरीर नहीं है। तो मेरा शरीर के ऊपर उपकार शुरू हो जाता है। उपकारी आत्मा त्रिकालदर्शी होने के कारण तीनों कालों को समझती है और उसके अनुसार देती रहती है। हम जो देते हैं वो व्यर्थ भी नहीं जाए, उसका यूज 100% होए। जिस काम के लिए दिया गया है वो उसका यूज वहां हो। मैं अभी आने के पहले ग्लोबल से आ रहा था, डेंटल डिपार्टमेंट में नई चेयर, डेंटल चेयर लगा रहे थे और किसी और ने कंट्रीब्यूट की थी, रिक्वेस्ट किया था तो उन्होंने दिया था, तो वो उन्होंने कहा था आके देखना आप। चेयर लग रही थी, चेयर एक व्यक्ति ने दी पर उसका फायदा बहुतों को मिलेगा। पर उसका अपेक्षाएं मेरे ऊपर ना आए, वो बोझ हो जाएगा। वो जिसने दिया क्रेडिट उसको जाए या उसको जाए, ऊपर वाला करा रहा है, हम केवल खड़े हैं, निमित्त है। यही ब्रह्मा बाप से सीखा, दादियों से सीखा कि कभी भी उन्होंने क्रेडिट अपने ऊपर नहीं लिया। हमेशा कहा मैं सेवाधारी हूं, आई एम ओबीडेंट सर्वेंट, और मान शान सब बच्चों को दिया। हमारी भी ड्यूटी है कि जो भी हम करें क्रेडिट उसको दें, वो करा रहा है, मैं कर रहा हूं, तो वो 100% एनर्जी देगा। लॉर्ड गौतम बुद्धा से पूछा किसी ने, मैं इतना गरीब क्यों हूं? लॉर्ड गौतम बुद्धा ने कहा, तुम्हें देना नहीं आता। उस व्यक्ति ने कहा, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं क्या दूं? लॉर्ड गौतम बुद्धा ने कहा, तुम अपनी खुशी दे सकते हो, हाथों से किसी को मदद कर सकते हो, कुछ मीठे बोल बोल सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, और जब करोगे तो आएगा। गिविंग जब हम करते हैं तो यूनिवर्स हमें ऑटोमेटिक देता है। जैसे ही हम देना शुरू करते हैं, एनर्जी, खुशी, उमंग, उत्साह दूसरों का बढ़ाते हैं तो हमारा खुद का बढ़ता है। यह मेरा खुद का भी अनुभव है। वो दिन जिस दिन मैं सोचता हूं मैंने कुछ बाबा ने करवाया, उस दिन की एनर्जी, अंदर के हार्मोन, डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन बढ़ जाता है और एक अलग से ही एनर्जी आती है। बहुत साल पहले आसाम के एक छोटे गांव में गया, उस स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में पॉजिटिव थिंकिंग का लेक्चर था। लेक्चर के बाद एक छोटी सी बहन, कन्या, उसने आके कहा, हाथ मिलाया कि आज के दिन से मैं हमेशा खुश रहूंगी और पॉजिटिव रहूंगी। उसकी वो मुस्कुराहट और चेहरा आज तक याद है। वो चीज 25 साल पहले की बात है। तो हम किसी भी तरीके से दे सकते हैं। उपकार का अर्थ केवल फिजिकल नहीं है, स्पिरिचुअल भी है, इमोशनल भी है। किसी को गले लगाकर कहा सब ठीक है, कितना अच्छा रहता है। एज ए डॉक्टर अगर मैं कहूं किसी को भी, पेशेंट जो है, कि ठीक हो जाओगे, कोई चिंता की बात नहीं, और उसका हाथ पकड़ लिया तो आधी बीमारी ठीक हो जाती है। क्योंकि बीमारी का भी कारण जो मैंने अभी देखा पिछले 2 साल में, पर्टिकुलरली कोरोना के बाद, ज्यादातर माइंड का हो गया है। उस पीरियड के बाद मैं देख रहा हूं एंजाइटी बढ़ गई, डिप्रेशन बढ़ गया, चिंताएं बढ़ गई, अनसर्टेनिटी बढ़ गई। लोगों के पास सब कुछ है, तन मन धन सब है, फिर भी घबराए हुए हैं। चेहरे पर वो उमंग और उत्साह ही नहीं है। डिप्रेशन का अर्थ ही होता है उमंग उत्साह नहीं है जीवन में, जी रहे हैं। और यहां बाबा क्या सिखा रहा है, हर सेकंड मेरा, हर मिनट मेरा, हर दिन मेरा नया है। जब मैं सुबह उठकर अपने में एनर्जी डालूंगा, खुशी डालूंगा, तब तो दूसरे को दूंगा। अगर मैं घर से निकल रहा हूं सेंटर के लिए और मेरा ही चेहरा डाउन है, खुश नहीं है, कहां जा रहे हो, ब्रह्मा कुमारी में जा रहा हूं, लोग कहेंगे ठीक है, ये हमारे जैसा ही है, हमें भी चिंता है, इसको भी है। अगर मैं खुशी से जाऊंगा, उमंग उत्साह से जाऊंगा और वो चेहरा देखेंगे, वो भी आएंगे। और वही बाबा ने कहा, आने वाला समय, या अभी से ही मैं कहूं, कुछ नहीं है, वाणी का कम हो गया, कोर्स कराने का कम हो गया, अब क्या हो गया, चेहरा चलन, उमंग उत्साह, लोग वो देखना चाहते हैं। सुनना, सुनने की ताकत मैं कहूं 10% से भी कम हो गई है। मैं हॉस्पिटल में ही देखता हूं नीचे सब खिड़की पे, क्योंकि कोरोना के बाद खिड़की से ही पेशेंट को देख रहे हैं, स्पीकर लगाया हुआ है, बोला गया यहां से बोलो, और मैं रूम में नंबर है, वो बहन देती है कि 11 नंबर जाओ, 10 नंबर जाओ, मैं देखता हूं वो कोई नहीं सुनता, वो कहीं भी घुसेंगे, खिड़की पे लिखा हुआ है यहां से बोलो, अंदर मत आओ, वो अंदर आएगा ही, और वहां जाएगा तो वो देख नहीं रहा है, वो नीचे जाएगा ही। डॉक्टर के लिए स्पीकर लगा है, उससे बोलो। तो इसका अर्थ क्या हुआ, न सुन रहा है न देख रहा है। 6 बजे के बाद बाहर खड़ा रहता हूं कभी कभी, तो लोग आकर पूछते हैं हॉस्पिटल बंद हो गया क्या, और जबकि हॉस्पिटल पर लिखा हुआ है चार से छह। तो इसका अर्थ क्या हो रहा है? प्री ऑक्यूपाइड माइंड। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस समय का जो हो गया है, चाहे बाहर वाले चाहे ज्ञान वाले, फुल हो गया है। फुल जीबी मैं कहूं, पता नहीं कितनी जीबी पूरी फुल है, क्योंकि कोरोना के टाइम बहुत सुन लिया, क्लासेस दर 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 आई सुन लिया, तो स्पेस ही नहीं है। और स्पेस नहीं है तो बेचारे वो भी क्या करें, कहां सुने। तो इसीलिए बीच बीच में इसको खाली करो, बीच बीच में मन को, मन रूपी जीबी को खाली करो। जितना वो खाली होगा उतना नया आएगा, और उतना मैं अवेयर रहूंगा कि मुझे क्या करना है इस समय, इस सेकंड मुझे क्या करना है। वही मेडिटेशन है कि मैं वर्तमान में आकर देख रहा हूं कि इस समय मुझे क्या करना है, क्या बोलना है। और वो अवेयरनेस आ गई, कॉन्शियसनेस आ गई, तो हमारा हर संकल्प, बोल, कर्म, स्वभाव, संस्कार नेचुरल हो जाएगा। जैसे ही मुझे लगा मेरा चेहरा डाउन हो रहा है, उसी समय संकल्प पैदा करो, नहीं नहीं मेरे को तो खुश रहना है, क्योंकि हमें किसी भी तरीके से देना है। संगम पर हमारी ड्यूटी क्या है? एक ही है, और वो क्या है? देना है। चाहे मैं अपने खजानों से दूं, जिसको कहते हैं वरदानी, वरदानी का अर्थ होता है मैं अपने सब खजानों से, संकल्प बोल से, मेरे फुल पोटेंशियल से लोगों को दे रहा हूं। महादानी का अर्थ होता है थोड़ा थोड़ा जमा करता है, थोड़ा मार्ग बताता है, और दानी रहता है जमा किया और किया। तो एक क्या करता है? पूरा सहयोग देता है। महादानी क्या करता है? बताता है, वो भी ठीक है। और दानी क्या है? खाली बता देगा वो वहां है, किचन वहां है। महादानी क्या कहेगा? बताएगा नीचे उतरो, लेफ्ट से जाओ, वहां तक जाओ, मार्गदर्शक होगा। और वरदानी क्या होगा? चल मैं ले चलता हूं। नीचे भी यही होता है, कई माताएं कहेगी वो बिल्डिंग कहां है, मैं समझ जाता हूं पहली बार बेचारे आए हैं, देखता हूं कंफ्यूज हो रहे हैं, तो चलो वहां तक आधे रास्ते तक फिर बोल देता हूं। अगर उनको कहूं लेफ्ट से जाओ, राइट से जाओ, इधर जाओ, टर्न लो, कंफ्यूजन होगा। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी है कंफ्यूजन, ड्युअलिटी। दो चीजें आ गई हैं, और ड्युअलिटी के कारण क्या परखना है, क्या निर्णय करना है, वो नहीं हो पा रहा है। हमें क्या करना है? मन और बुद्धि को एक कर देना है। मन बुद्धि एक होंगे तो मन जो सोचेगा बुद्धि कहेगी कर, तो हमारा निर्णय शक्ति, डिसीशन पावर एक हो जाएगा। नहीं तो उस दिन एक बहन मुझे बता रही थी, एक क्लास करा रहा था यंगस्टर की, कुमारियों की, वो कहती है वो जॉब करती है, कहती है मैं क्या करती हूं, दो चिटकी डाल देती हूं, यस और नो, और जो चिटकी निकली वो करती हूं। अब लॉजिकली देखा जाए ठीक है, पर उसका और एनालिसिस करें तो गलत है, क्योंकि बाबा हमें निराधार बना रहा है। बाबा हमें किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करा रहा है। बाबा हमें अंत समय की तैयारी करा रहा है, और उस समय कुछ नहीं होगा। जो बाबा ने दो तीन मुरलियों में कहा, ना कोई लाइट होगी ना ये होगा, आपको खुद ही उसी समय उसी सेकंड डिसीजन लेना पड़ेगा। और जो कोरोना के टाइम काफी प्रॉब्लम आए, क्योंकि एंड में बाबा ये नहीं कहेगा कि ये होने वाला है, 5 मिनट पहले भी नहीं कहेगा, 10 मिनट पहले भी नहीं कहेगा। अगर आपका कैचिंग पावर अच्छा है, परखने की शक्ति अच्छी है, तो आपको सिग्नल आ जाएगा कि ये कर। अगर कंफ्यूजन रहेगा मन और बुद्धि का, तो वो सिग्नल भी कैच नहीं कर पाएंगे और डिसीजन रॉन्ग होगा। इसीलिए हमें अपने मन को, बुद्धि को निराधार बनाना है कि बिना किसी आधार के मैं डिसीजन ले पाऊं। एक केवल शिव बाबा का आधार होए, मेरी कनेक्टिविटी होए, लिंक होए, और एक सेकंड में मैं डिसीजन लिया और करा। ऐसी सिचुएशन पूरे वर्ल्ड में चल रही है, इसीलिए हम लोगों की ड्यूटी संगम पर क्या है, देना। जो बाहर वाले लिखते हैं कई ऑफिसेस में, बैंक में, मे आई हेल्प यू, अलग से एक डेस्क रहता है, मे आई हेल्प यू, मैं क्या आपकी मदद कर सकता हूं, मैं क्या आपकी हेल्प कर सकता हूं, वो पूछे ना पूछे मेरे को परखना आना चाहिए कि इसको क्या जरूरत है। अब उससे और ऊपर ले जा रहा हूं, PhD, उसको मेरे को देखा, कांटेक्ट हुआ, कम्युनिकेट हुआ आंखों आंखों से, उसको क्या चाहिए, उसको क्या डर है, वो मैं परख लूं। हम लोग हेडक्वार्टर में, मैं हमेशा कहता हूं हरेक को, हमारा जॉब ही केवल ये है, मे आई हेल्प यू, और कोई नौकरी नहीं है, केवल यही है, मे आई हेल्प यू। सब आत्माएं आ रही हैं, तरह तरह की आत्माएं आ रही है, चाहे वो किसी भी स्थिति में है, कोई भी है, ज्ञानी है अज्ञानी है, सबको मेरे को मदद करना है। उपकारी आत्मा केवल ज्ञानियों पर नहीं करती, उपकारी आत्मा सत्युग से लेके कलयुग के अंत तक की आत्माओं को मदद करती रहती है। वो महादानी कभी कभी थोड़ा करता, पर वरदानी क्या करता है, जो उसके सामने आ गया मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देता। तभी तो मैं पूजा जाऊंगा, दोपहर के बाद भी लोग मेरे को पूजेंगे, वो तब पूजेंगे जब मैं उनको वहां सब आत्माओं को दे रहा हूं। मैं कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा हूं कि ये आत्मा पवित्र अपवित्र, सबको दे रहा हूं। उसमें गुण है कि कमियां है मैं नहीं देख रहा हूं। उपकारी आत्मा किसी का अवगुण नहीं देखती, न वर्णन करती, न चित पर लाती, हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमारा काम केवल उसको उस समय मदद करना है। मेरे पास फोन आते हैं, पूछते हैं ये करें ये करें, मदद करना है, करते रहना है, चाहे वो मैं उसको जानता हूं नहीं जानता हूं, डिफ्रेंशिएट नहीं करते, वीकनेस नहीं देते, बल्कि उसकी वीकनेस को हमारे संकल्पों से स्ट्रांग करते हैं, गिरे हुए को उठाते हैं, वो उपकारी आत्मा है। उसने गलती की, पर बाबा के ड्रामा अनुसार क्या है, हर कोई आत्मा निर्दोष है, कोई दोषी नहीं है। क्यों दोषी नहीं है, हरेक के आत्मा में जो पार्ट स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, प्रोग्रामिंग की गई है, वो उसकी नहीं है, है। अब मैं कौन होता हूं उसको कहूं तू रॉन्ग है, वो अपने वे में राइट है। तो हर आत्मा निर्दोष है, मैं हरेक को हेल्प कर रहा हूं। उसने 10 बार गलतियां की, फिर भी करना, मैं जब देख रहा हूँ उसको, चाहे बाबा देखता था, बाबा से ही सीखा, दादियों से ही सीखा कि जब वो देखते थे तो हरेक का संपूर्ण और संपन्न रूप देखते थे, वो फ्यूचर का रूप देखते थे कि ये देवता बनने वाला है। और सुखधाम में हरेक का पार्ट अपना अपना है, वो चाहे उसका पार्ट अभी वीक है पर आगे चलकर वो शायद स्ट्रांग बन जाए। जब हम देते हैं तो हमारी हेल्थ भी अच्छी होती है। अब वो एक और सीक्रेट, जब हम देते हैं तो हमारी हेल्थ भी अच्छी होती है। हाथ उठाएं और कहें आई एम हेल्दी, मैं बहुत ठीक हूं, अच्छा हूं, परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ संतान हूं। खड़े हो जाएं।
प्यारा बाबा मीठा बाबा, मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा, मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा, मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा, इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। जिसको ढूंढ रही है वो धरती पे पधारा, आओ मेरे लाडलो बच्चे कह के पुकारा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। पल हमें चैन कहीं ना आए, ना पुरानी गहरा पानी है बाबा तू ही सहारा। इसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। सदा वो रहते हमारे साथ, सदा वो चलते। जिनकी दरस को तरसे दुनिया, रोज हमें वो मिलते। बाबा मेरे जन्नत को है उतारा, इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा, मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा। मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा, मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। दुनिया जिसको ढूंढ रही है वो धरती से पधारा। आओ मेरे लाडलो बच्चे कह के पुकारा, इसका इसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। इसका इसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। उसका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा।
जो उपकार करता है वो खुद भी बेगमपुर का बादशाह रहता है, दूसरों को भी बताता। बेगमपुर का बादशाह मीन्स मन में भी कोई चिंता नहीं है कि क्या होगा, वो साक्षी होकर देखता रहता है और जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट कर रहा है, उसमें रिएक्ट नहीं कर रहा है। एक्ट कर रहा है और शांति से आंसर दे रहा है। अशांति में भी शांत रहना वो सबसे बड़ा उपकार है। शांति में शांत रहना सब लोग करते हैं, पर पूरा नेगेटिव सिचुएशन है, ट्रैप में है, उसमें शांत रहकर उसको ठीक करना वो उपकारी जीवन है। हमारा काम ही है समाधान करना, हमारा काम ही है निवारण करना। हम वर्ल्ड के लीडर्स हैं, लोग हमें देख रहे हैं, पूरा विश्व मेरे को देख रहा है, मेरा हर संकल्प पूरे यूनिवर्स में जा रहा है। मेरा अगर नेगेटिव संकल्प होगा, कमजोर होगा, पूरे वर्ल्ड में वही वातावरण बनेगा। इसलिए हमारे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पूर्वज आत्माएं हैं, पूजनीय आत्माएं हैं। जो कल के संडे की मुरली में भी था, एक पॉइंट मुझे बड़ा अच्छा लगा, जो मूर्ति रहती है शांत रहती है, तभी तो पूछते हैं। शांत रहती, मूर्ति के आगे हम झुकते हैं, तो हमें भी क्या करना है? वो परमधाम की शांति और सुखधाम की खुशी दोनों लोगों को देना है, वही उपकार है। घर की शांति, परमात्मा की शांति और सुखधाम की खुशी लोगों को बांटना है, तभी वरदानी महादानी बनेंगे। वरदानी यानी मेरे अंदर सब जो पावर है, शक्तियां हैं, गुण हैं, उसको मैं दे रहा हूं। चिंता नहीं कर रहा हूं कि मेरा क्या होगा, जब देता हूं तो और आएगा। एक लकड़ी काटने वाला व्यक्ति रोज लकड़ी काटता था, पर फिर भी बहुत मेहनत करता था, पूरा खाना उसको मिल नहीं पाता था। एक दिन एक एंजल आया, पास हो रहा था, बोला मैं इतनी मेहनत करता हूं फिर भी पेट भर के खाना नहीं मिलता है, परमात्मा से पूछना क्या है? वापस आया, उसको बोला, परमात्मा ने कहा है तेरे कोटे में केवल 5 बोरी अनाज है और तेरी आयु 60 इयर्स है, 60 साल है, इसलिए थोड़ा थोड़ा परमात्मा दे रहा है कि 60 साल तक चले। वो करता गया, फिर एंजल आया, एंजल को बोला मजा नहीं आ रहा है, परमात्मा को कहना कि सब मेरा कोटा एक दिन में ही दे दे। अगले दिन उसके यहां 5 बोरी अनाज आ गया, बड़ा खुश हो गया, उसने फटाफट खाना बनवाया, खुद भी खाया पेट भर के, दूसरों को भी खिलाया जितने आसपास थे, गरीब थे। देखा अगले दिन फिर 5 बोरी अनाज आ गया, फिर किया तो एंजल फिर पास हो रहा था, उसने एंजल से पूछा ऐसा कैसा? आपने कहा केवल मेरा कोटा 5 बोरी का है, पर मैं रोज बना रहा हूं, रोज आ जा रहा है। बोला यही तो सीक्रेट है, तू अपनी चिंता न करके दूसरों को खिलाया तूने, तो तेरा फ्लो चालू हो गया जो ब्लॉक था। तो निर्दोष और निस्वार्थ होकर जब हम देते हैं तो वो बढ़ता है और उससे हमारी हेल्थ भी ठीक होती है। एक बहुत लाइवली एग्जाम्पल है, रियल एग्जाम्पल है रॉकफेलर का, अमेरिका के। रॉकफेलर वर्ल्ड के पहले अरबपति, फर्स्ट बिलियनर थे। वो ऑयल रिफाइनरी, तेल की जो रिफाइनरी होती है, 28 साल में ही वो मालिक बन गए थे और धीरे धीरे 90% अमेरिका की ऑयल रिफाइनरी उनके हाथ में आ गई थी और 48 साल तक वो वर्ल्ड के फर्स्ट बिलियनर बन गए, अरबपति बन गए। 53 साल के थे, सब अच्छा चल रहा था, उनको बीमारी आ गई। पैसा था, डॉक्टर सब सब था, पर धीरे धीरे डाउन हो रहे थे। ऑलमोस्ट डॉक्टर्स ने कहा 1 साल या 2 साल। जब पूरा ही डाउन हो रहे थे, उन्होंने अपने सब अकाउंटेंट सीए सबको बुलाकर बोला, अब मैं जा ही रहा हूं, इतना पैसा कोई है नहीं, तो मैं इसका ट्रस्ट बना देता हूं और इस ट्रस्ट से रिसर्च, मेडिकल रिसर्च में लगे। उन्होंने अपना पूरा पैसा वो ट्रस्ट को दे दिया और उसी ट्रस्ट से पेनिसिलिन का, डिप्थेरिया वैक्सीन का आविष्कार हुआ। आज भी रॉकफेलर ट्रस्ट वर्ल्ड का सबसे स्ट्रांग ट्रस्ट है, कई कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज हैं। पर उन्होंने देखा, जैसे ही उन्होंने ट्रस्ट को दिया, थोड़े समय में वो ठीक होने लगे और 98 ईयर्स तक जिए। क्या हो गया, क्या हो गया? लोगों की दुआएं आने लगी, कई बच्चों को स्कॉलरशिप मिली, आज भी मिलती है। लोगों की दुआएं जमा होने लगी और बाबा ने भी कहा कि सबसे बड़ा गिफ्ट हमें चाहिए तो वो क्या है, दुआएं हैं, ब्लेसिंग्स हैं। तन मन धन कारें कुछ काम में नहीं आती, वो देख लिया कोरोना में, पड़ी रही थी, कोई यूज ही नहीं कर पा रहा था, पर क्या काम आया? जिसकी इम्यूनिटी अच्छी थी, जिसकी खुशी अच्छी थी, जो अपने को एंजॉय कर पा रहा था वो ठीक रहा, जो अपने को एंजॉय नहीं कर सकता था, आधारित था, वो बीमार हो रहे थे। इसीलिए बाबा क्या करा रहा है, सब तैयारियां पहले से करा रहा है, बहुत काल का अभ्यास चाहिए, बहुत साल, बहुत काल की प्रैक्टिस चाहिए माइंड को, नहीं तो माइंड क्या करता है, सबकॉन्शियस में घुस जाता है और जो सबकॉन्शियस में प्रोग्राम होते हैं वो खुल पड़ते हैं। और ज्यादातर हमारे प्रोग्राम जो बचपन से गए हैं बड़े होने तक, ऐसा माना गया है कि एवरेज, ऑन एवरेज एक आत्मा के अंदर मां के पेट से लेकर 6 साल 7 साल तक 3 लाख प्रोग्राम डाउनलोड हो जाते हैं। उसका कॉन्शियस माइंड काम नहीं कर रहा है, केवल वो जो देख रहा है, सुन रहा है, फील कर रहा है, वो जा रहा है। मां ने कहा ये, फादर ने कहा ये, दोस्तों ने कहा ये, मीडिया में जो देखा गया, अब वही प्रोग्राम उसकी पर्सनालिटी बन जाता है बड़े होके भी। इसलिए ज्यादातर न्यूरोटिक प्रॉब्लम, साइकोटिक प्रॉब्लम, डिप्रेशन के प्रॉब्लम कहीं ना कहीं रूट होता है उसका बचपन का वो प्रोग्राम, जो अब मैच्योर्ड होकर खुल रहा है। इसीलिए जरूरी है, सबसे बड़ा हथियार बाबा ने हमें दिया है खुशी। खुशी हम खुद खुश रहें, अपेक्षाएं नहीं रहे, किसी से लेने की इच्छा नहीं रहे, जो बाबा ने कहा है किसी से मांगना नहीं है, अपने आप आएगा, फ्लो करेगा। अपेक्षाएं रहेंगी तो प्रॉब्लम आता है, तो बिना अपेक्षा के मुझे देते रहना है और रहना है, क्रेडिट नहीं लेना है मैंने किया। आदरणीय जगदीश भाई जी ने, मैं यहीं क्लास कराते थे, जगदीश भाई यहां बैठते थे, सभी बैठते थे, दादियां बैठती थी, सब लोग, हम लोग वहां बैठते थे, वो दिन भी याद है। और वो कहते थे न दिखाना है, न दिखाना है, न देखना है, अपने को देखना है, न दिखाना है क्रेडिट, मैंने किया, गर्दन अकड़ी, सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइटिस आई, बैक पेन चालू हुआ, न दिखना है, दिखना यानी कईयों को बहुत शौक होता है, फोटो खिंचवाऊं, ये करूं, वो करूं, वो करते ही फंक्शन है फोटो खिंचवाने के लिए, तो वो फोटो, तो माया भी कहां वार करती है, माया कहां वार करती है, ये इतने पे, ये गर्दन ही 5 इंद्रियां यहां है। इसीलिए बाबा कहता है अंतर्मुखता की गुफा में जाओ। अंतर्मुखता क्या है? मुख, यहां सब इंद्रियां मुख के ऊपर है, उसके अंदर जाना है, इंद्रियों से परे होकर मैं अंदर जा रहा हूं और जितना दिखूंगा उतना माया मारेगी। अब मैं दिख ही नहीं रहा हूं, सरेंडर हो गया हूं, तो माया कहां मारेगी? सरेंडर का अर्थ क्या हुआ? सर अंडर, सर को मैंने अंडर कर दिया तो मैं दिख ही नहीं रहा हूं, तो माया काम आ रही है। तो ज्ञान का अर्थ ही है अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठकर काम करते रहना, घर गृहस्थ में रहते हुए करते रहना, हर चीज करना है, पर कैसे करना है, लौकिक को अलौकिक में रहकर करना है, उसकी याद में रहकर करना है। हर कार्य यही सोच रहा हूं वो करा रहा है मैं कर रहा हूं, तो फिर खुद ही चांस आएगा देने का। हमें कोई बोलने की जरूरत नहीं रहती कि अरे कोई आए मैं दूं, ऑटोमेटिक आएगा वो आत्मा, ऑटोमेटिक यूनिवर्स से कहीं ना कहीं से आपके सामने खड़ी हो जाएगी, ना चाहते हुए भी वो आएगी। अभी एक किस्सा ऐसा ही हुआ, वो बहन ऑटोमेटिक कहीं और थी, कहीं और से आ गई, कहीं और डॉक्टर को दिखाने गई, ऑटोमेटिक आ गई, वो ऑटोमेटिक आएगी। और आपका काम उस समय, हमारा काम उस समय है उसको देखना, उसकी केयर करना। और एक छोटा काम भी मैंने 100% किया तो वो उपकार हो गया। कोई बड़ा काम नहीं करना है, छोटा काम जो मेरे को आज के दिन दिया गया, इस सेकंड दिया गया, इस मिनट में की दिया गया, वो अच्छी तरह करूं। और जो ड्यूटी दी गई है यज्ञ में मैं कर रहा हूं 100%, तो वो उपकार हो गया। और जब वो करते हैं तो और आता है, उसको ही ठीक से नहीं करेंगे, अरे ये मेरी ड्यूटी है क्या सफाई की इसकी, तो बाबा ने कहा कोई भी साक्षात्कार करा सकता है। बाबा ने क्लियर कट कहा है कि कोई भी साक्षात्कार कराएगा, घर वाला भी कराएगा, सफाई वाला भी कराएगा, कोई भी करा सकता है, केवल याद उस परमात्मा की, बाबा की हमारे अंदर रहे। तो बाबा खुद आके वो साक्षात्कार कराएगा। इसलिए ड्यूटी को मत देखो, उस समय मेरे को क्या दिया गया है रोल उस यूनिवर्स ने, वो रोल को अच्छी तरह प्ले करो, खुशी से करो। दादी जानकी जी हमेशा कहती थी, जब हॉस्पिटल बोलती थी कि हॉस्पिटल में एक ड्यूटी, जो लोग दरवाजे से आए हॉस्पिटल के, वहां एक को बिठा दो कुर्सी पर, काउंटर में जाने के पहले वो उस कुर्सी वाले जिसकी भी ड्यूटी है वहां से अंदर आए, और उसकी ड्यूटी केवल ये रहेगी कि वो मुस्कराएगा। हॉस्पिटल में सब दुखी आते हैं, टेंशन में आते हैं, और उस समय कोई मुस्कुराकर उनको देख लेता है, बात कर लेता है, कितना अच्छा लगता है। अगर सभी टेंशन में हॉस्पिटल में डॉक्टर नर्सेज वो, नहीं नहीं लास्ट चांस है, 3 दिन बस ये है, गया तू गया, तो बेचारा वो तो गया ही गया। तो सबसे बड़ा दान क्या है, उपकार क्या है, शांति खुशी प्रेम का। किसी को प्यार दे दो ठीक हो जाएगा, डरो मत। हम है जो बाबा का वो वाला बड़ा अच्छा लगता है मेरे को पिक्चर, मैं हूं ना, कितना पावरफुल है, मैं हूं ना, खाली उसको देख लिया मैं हूं ना, फिर क्या चिंता, मैं थोड़ी करा रहा हूं, यहां पर जैसे ही बैठ गए वो करा रहा है, मैं तो बैठा हूं, मेरी कर्म इंद्रियां थोड़ी है उसकी है। तो जो डर अंदर का रहता है वो खत्म हो जाता है। और सबसे ज्यादा तंग करता है मनुष्य को उसका अपना ही डर, इनसिक्योरिटी, नेगेटिव थॉट, जो लॉर्ड गौतम बुद्धा ने कहा सबसे बड़ा शत्रु आदमी का कौन है, तो उन्होंने कहा अपना नेगेटिव थॉट, जो बार बार आ रहा है, घूम रहा है और उसी के कारण डिप्रेशन आता है। तो जैसे ही आए उस समय याद करो, अरे मैं तो पूजनीय आत्मा हूं, मेरा काम है देना। और चेहरा एकदम खुशनुमा हो जाए, आंखों में उमंग उत्साह रहे, दूसरे को सहयोग देने की भावना हो, तो सब पूरा बॉडी का केमिस्ट्री चेंज हो जाएगा। जो मैंने रॉकफेलर का बताया कैसे 53 से 98 तक गया, जिसको डॉक्टर ने कहा था एक साल दो साल, तो देते रहो। इवन लॉर्ड गौतम बुद्धा ने कहा कुछ नहीं है तो मिट्टी का दान कर दो, देने की भावना आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा। ओम शांति।
प्रभु का लूटा दिल चले।